श्री श्री लाडली लाल की, श्री बरसाना धाम की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री नंदगांव धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों की आवाज मुझ तक भी ठीक नहीं पहुंची, तो पहाड़ पर कैसे पहुंचेगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंग्लिश में कहते हैं कि यू कैन ऑलवेज डू बेटर, जीवन के हर गतिविधि में सदैव हम जितना कर रहे हैं उससे अच्छा कर सकते हैं, और भगवान के भक्ति में तो अच्छा ही करना चाहिए, और जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही करना चाहिए। भगवान के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, नो माइजरलीनेस। कृष्ण के लिए सदैव जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता के साथ में सेवा करनी चाहिए। ये हमारी यात्रा का ओपनिंग स्टेटमेंट है, इसका अर्थ समझो ना, चार दिन में आपको ऐसे ही रहना है। जितना आपके क्षमता में है उतनी पूरी क्षमता, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, लेकिन सबको अपनी पूरी क्षमता लगानी है, क्योंकि श्री वृंदावन धाम में आना इतना आसान नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ पर ओके, क्षमा चाहता हूँ। आप लोग भी अपने मोबाइल बंद कर दीजिए या साइलेंट पर रखिए, मैंने कर दिया है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कोई व्यक्ति वृद्ध हो सकता है, कोई व्यक्ति युवा अवस्था में हो सकता है, उसका कोई परवाह मत करना आप। हाँ, तो वृंदावन में आना इतना आसान नहीं है। बहुत लोग हमारे कैंप में भी आना चाहते थे, नहीं आ पाए, और बहुत लोगों का आगे पीछे चलते रहता है, क्योंकि यहाँ पर बस का, ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट, रूम बुकिंग करके प्रवेश नहीं मिलता है। यहाँ पर राधा रानी की कृपा से प्रवेश मिलता है, इसलिए आप लोगों को राधा रानी के पास जाके प्रार्थना करनी है, क्योंकि गिरिराज की परिक्रमा करने का जो संकल्प किया है वो एक प्रकार से कठिन है, बट राधा रानी की कृपा रहेगी तो वो कठिन नहीं होगा, आसान हो जाएगा। वैसे तो हमने पिछले 40 साल में कई बार परिक्रमा लगाई है, लेकिन हर बार गोवर्धन की परिक्रमा करने के पहले वो मन में सदैव एक शंका और डर सा रहता है कि पूरी हो पाएगी ना। और फिर कई दिन से बलराम जी, नित्यानंद प्रभु जी, राधा रानी को प्रार्थना चलती रहती है कि होने दो, होने दो। ऐसा उसमें लास्ट में कितना बचा है कितना बचा है कितना, ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए। जिस उत्साह से शुरुआत करते हैं उसी उत्साह से हमको अंतिम पड़ाव तक चलते रहना है, इस प्रकार का चिंतन चलते रहता है। इसलिए आज का जो हमारा संभाषण होगा आपके साथ, ये एक तो तैयारी का होगा और दूसरे राधा कुंड की कथा का होगा, ताकि हम सब लोगों को इसकी गंभीरता पूर्णता से पता चले। ये सब जो कार्य हम कर रहे हैं, जो अश्रद्धालु लोग हैं उनके दृष्टि से एकदम टाइम पास है, कोई पर्वत है सब लोग घूम रहे हैं उसके पीछे आगे, कोई नाच रहे हैं कोई गा रहे हैं। जो अश्रद्धालु है उनको ये समझ में नहीं आ सकता है, और जो श्रद्धा रखते हैं और जिनको नॉलेज है उनके लिए अति अति महत्वपूर्ण काम है, अति गंभीरता से किया जाने वाला कार्य है। तो वो गंभीरता नहीं रहेगी तो आपका सारा जो सफ़र है वो एक प्रकार से वेस्ट हो जाएगा। तो हमारी ये प्रार्थना है और शुभकामना है, हम ये चाहते हैं कि आप सब लोगों को इस संकल्प को जो हमने किया है आप सब लोग ने मिलकर, उसका 100% 200% दिव्य आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए। ये हमारी हृदय से राधा रानी के चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, याचना है कि जो प्राप्य है, जो प्राप्त हम कर सकते हैं वो पूरी तरह से हमें प्राप्त होना चाहिए, और हमारी तरफ से कोई क्या कहते हैं उसको त्रुटि या कमी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। बाकी जो वातावरण जो में जो चल रहा है वो हमारे बस में नहीं है, धूप आ रही है वो हमारे बस में नहीं है, सवेरे की ठंड है वो हमारे बस में नहीं है, धूल उड़ रही है वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा हमारे बस में है, कितना उत्साह से कुछ जो कुछ करना है वो हमारे बस में है। तो आप अपने बस में जो है वो 100% लगा दीजिए, उसमें इन्वेस्ट निवेश कर दीजिए, और बाकी जो चल रहा है वो चलने दीजिए। क्योंकि वैसे भी राधा रानी हमें जो देना चाहती है वो देगी, हम कितना ले सकते हैं ये अपने ऊपर निर्भर है। तो राधा रानी जब खुले हाथ से दे रही है तो हम लोगों को लेने में उसमें त्रुटि कमजोरी निरुत्साह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि ब्रज में अगर आप आते हैं तो यहाँ का एक क्षण भी अगर आप सही चेतना में गुजारते हैं, प्रेम भक्ति और कृतज्ञता कुछ इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रेम भक्ति निस्वार्थ भाव और कृतज्ञता के साथ में अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो एक क्षण भी यहाँ का जो निवास है वास है ब्रजवास वो आपको जीवन के अंत में गौलोक पहुँचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्या अधिकार है कहने का, मैं गुरुजनों का आचार्यों का वचन यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आप अभी से ही हृदय में धन्यवाद कीजिए कि आपने हमको यहाँ पहुँचा दिया, धन्यवाद है आपका। 4 दिन यहाँ पर रहना है और 4 दिन में जो बटोर सकते हैं वो बटोरना है, हर समय पर धन्यवाद धन्यवाद देते रहना है, जो भी कष्ट होते हैं तो स्वीकार करना है, उसके लिए कंप्लेंट नहीं करना है। 4 दिन का तो निवास है, उसमें क्या असुविधा होगी, तो घर जाकर सुविधा ही सुविधा है, तो इस असुविधा के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्राप्त होने वाला है वो असुविधा के सामने प्रचंड है। असुविधा के सामने आप गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने गुणित आपको उसका लाभ मिलने वाला है। तो कभी भी आपको कहेंगे आपको 2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन बदले में आपको 2 करोड़ रुपये मिलेंगे, प्रभु जी 2 रुपये तो बहुत होता है, 2 रुपये बहुत महंगा पड़ेगा, 1 रुपये में नहीं हो सकता क्या? तो क्या कहेंगे आप ऐसे व्यक्ति को? हाँ, तो हमें इस भाव से यहाँ पर रहना है, जो प्राप्त होने वाला है आप बोलेंगे जो कष्ट हुआ तो नो प्रॉब्लम वी आर रेडी। तो श्री वृंदावन धाम गौलोक से राधा रानी की कृपा से यहाँ प्रकट हुआ। गौलोक में भगवान ने राधा रानी को प्रकट किया अपने मामांग से, राधा रानी ने गोपियों को प्रकट किया, दाहिने अंग से ग्वाल बालों को प्रकट किया, सब ब्रजवासियों को निर्माण किया, ब्रजभूमि को निर्माण किया। फिर भगवान ने वहाँ पर रास रचाया। मैं आपको सब संक्षेप में बता रहा हूँ। उस रास में भगवान और राधा रानी के दिव्य शरीर में से अश्रु और श्वेद दोनों का निर्माण हुआ भाव में, और वो सारा जल जो है वो एकत्र हो गया और उसका एक तालाब बना। तालाब बना और अगले दिन गोलोक वृंदावन में राधा रानी और कृष्ण उस तालाब को देखने आए। वो तालाब इतना दिव्य, तेजस्वी, प्रकाशमान और भव्य था कि राधा रानी ने कहा कि इसको क्यों न नदी के रूप में प्रवाहित किया जाए, तो ये सीमित न रहे, सब जगह ये रस जो है वो बहता रहे। तो फिर वो नदी बन गया, उसी का नाम रखा गया यमुना। यमुना देवी का निर्माण गौलोक में इस तरह से हुआ। फिर एक दिन राधा रानी और कृष्ण ऐसे एकांत में थे और राधा रानी ने कहा कि गौलोक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, लीला करने के लिए बहुत ही आनंददायक स्थिति है। मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसा एक स्थान हो जिसमें हम एकांत लीला कर सकें, अंतरंग लीला, उत्कट लीला, इंटेंस पास टाइम्स। तो राधा रानी ये इच्छा व्यक्त ही कर रही है। वो व्यक्त होते होते ही उनके वक्षस्थल से एक नील तेज निर्माण होता है और सब उनके सामने जाकर आंखों से सामने गौलोक की भूमि पर वो विराजमान होता है और उसी क्षण वो बढ़ने लगता है चारों तरफ और आकाश में भी। थ्री डायमेंशनल ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ता है कि फिर कृष्ण को लाखों योजन, एक योजन 8 मील का होता है, लाखों योजन ऊंचाई के बाद उसको रुकते हैं कृष्ण, बस अभी। और इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन का निर्माण हुआ। अभी हर एक यमुना जी, गौलोक वृंदावन, चिंतामणि धाम वो वर्णन करने के लिए बहुत घंटे लगेंगे, हम संक्षेप में आगे बढ़ रहे हैं हमारे विषय तक आने के लिए। फिर एक समय गोवर्धन का निर्माण हुआ, फिर एक समय राधा रानी और कृष्ण जो है वो सिंहासन पर बैठे हैं, सखियाँ उनको हवा दे रही है, सेवा कर रही है, गीत गा रही है। और अचानक कृष्ण के मन में ऐसा भाव आता है कि वो राधा का भाव ले लेते हैं, राधा का भाव लेते एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और आसन से उठकर एकदम एक कुंज में भाग जाते हैं तेजी से आवेश में। और राधा रानी को भी कृष्ण का भाव आता है जी, वो कृष्ण अपने आप को और राधे राधे करके वो भी किसी और कुंज में भाग जाते हैं और दोनों जाकर दो अलग कुंज में अभी विरह का अनुभव कर रहे हैं। तो कुछ सखियां कृष्ण को मिलती है जो अभी राधा रानी के भाव में है। थोड़ा कठिन है समझना, इसी को प्रेम वैचित्र कहते हैं, विचित्रता प्रेम की। तो सखियां कहती है कृष्ण जो राधा रानी के भाव में है, क्या हुआ, वे कहाँ है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। कुछ सखियां उनको पूछ रही है, वो कह रहे हैं राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, मुझे मिलना है। तो फिर उन्होंने कहा कि दोनों को कहा कि दोनों के नामों का कीर्तन करो। तो दोनों ने नामों का कीर्तन किया जिनको वो पुकार रहे हैं, फिर भी कृष्ण या राधा रानी नहीं आए। तो सखियों ने कहा कि क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप में अभी तक वो तीव्र भाव नहीं है, अभी आप उनके नामों के प्रति अपराध कर रहे हैं, अभी सब लीला है ये। तो आप खड़े होकर ताली बजाकर नृत्य करते हुए पुकारना। तो दोनों ने खड़े होकर ताली बजाकर एक दूसरे को पुकारा और तत्क्षण एक दूसरे के सामने आ गए वो। और फिर कृष्ण ने क्षमा मांगी राधा रानी से, राधा ने भी क्षमा मांगी। तो उस समय जो भाव निर्माण हुआ उसके, उस समय उनके नेत्रों से बहुत सारे अश्रु बहे और जो कृष्ण के अश्रु बहे उससे कृष्ण कुंड श्याम कुंड बना, जो राधा के अश्रु बहे उसमें राधा कुंड बना। और कुछ समय के पश्चात दोनों अपने अपने कुंड में पिघल गए, विलीन हो गए। इस तरह से गौलोक में श्याम रूप कृष्ण रूप श्याम कुंड बना और राधा रूप श्रीजी रूप राधा कुंड बना। और राधा रानी और कृष्ण भगवान ने एक दूसरे के कुंडों को बहुत आशीर्वाद दिए, ये मुझे बहुत प्रिय होगा, आपके सानिध्य का अनुभव करूँगा, आपके इतना ही प्रिय होगा, दोनों ने खूब आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से गौलोक में राधा कुंड श्याम कुंड की निर्मिति हुई। और भी बहुत विविध कथाएं हैं, जो केवल जलाशय में दोनों प्रेम से पिघल गए, निर्माण किए हुए पहले से ही निर्माण, ऐसे अलग विविधता है। तो ये तीन प्रमुख स्थान हैं ब्रज धाम में, श्री वृंदावन धाम, यमुना देवी, गोवर्धन पर्वत और सर्वोच्च स्थान राधा कुंड श्याम कुंड। इस राधा कुंड के श्याम कुंड की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। तो संक्षेप में, पृथ्वी पर यह राधा कुंड श्याम कुंड कैसे अवतरित हुआ? तो श्री कृष्ण भगवान आप जानते हैं, राधा रानी ने साथ में खड़े होकर श्री कृष्ण ने सब लोगों को वादा किया कि हम आएंगे और सबको अपना अपना ड्यूटी बांट दिया, आपको ये बनना है, आपको बोलना है। देवताओं को सबको कहा कि आपको अपने अपने अंशों को भेजना है। तो ये कहते हुए जब वो विस्तार रूप में वर्णन कर रहे थे तो राधा रानी बेहोश हो गई। तो उनको बहुत प्रयास से उनको होश में लाया गया, शुद्धि लाया गया। तो कृष्ण पूछते हैं क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा ना कि आप जा रहे हो, इसलिए मुझे दुख हुआ, तो मैं बेहोश हो गई। तो राधा रानी ने, कृष्ण ने कहा तो किसने कहा कि मैं आपको छोड़ के जाऊँगा? तो राधा रानी ने कहा कि आप ज़रूर मुझे ले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। तो क्यों, आप क्यों नहीं आएंगी? जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति यत्र नो यमुना नदी, मैं वहाँ नहीं रह सकती वृंदावन यमुना और गोवर्धन के बिना। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं आपके मन को पहले से जानता हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही ये सब कहने के पहले से ही मैंने पृथ्वी तल पर वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम का कुछ हिस्सा पूरी यमुना और पूरा गोवर्धन को भेज दिया है। तब उन्होंने और एक शर्त रखी कि जब हम अवतार लेंगे आएंगे तो आपके बिना किसी को नहीं देखेंगे, आपकी वाणी के बिना किसी को नहीं सुनेंगे, आपके सुगंध के बिना कुछ नहीं सूंघेंगे, एक प्रकार से गूंगे बहरे और अंधे होके जब तक आप दर्शन नहीं देंगे। तो सबसे पहले जब राधा रानी को कृष्ण भगवान ने जन्म के बाद दर्शन दिया तो राधा रानी ने किल्लोल किया, किलकारी लगाई, हाँ, और कानों से सुनना आरंभ किया, नेत्र खुले, दर्शन किया, कृष्ण के सुगंध का ग्रहण किया। जब कृष्ण के सुगंध का ग्रहण किया तब आंखें खोली। इस प्रकार से राधा रानी आई। फिर वो कुछ समय गोकुल में रहे, राधा रानी रावल में, कृष्ण गोकुल में, 3 साल 4 महीने। फिर वो सबकी मीटिंग हुई तो फिर वो शिफ्ट हो गए नंदगांव बरसाना में, और फिर गोवर्धन कैसे आए उसकी भी लंबी कहानी है। वो द्रोण के गुरु, द्रोण गिरी के पुत्र के रूप में आए, हिमालय में प्रकट हुए। यमुना जी सूर्य की पुत्री के रूप में आई और नदी के रूप में प्रकट हुए। ये दोनों की एक लौकिक कथा है, एक पारलौकिक कथा है। डिवाइन अपीयरेंस एंड वर्ल्डली अपीयरेंस दोनों की कथा है। और फिर गोवर्धन प्रकट हुआ और गोवर्धन को फिर पुलस्त्य मुनि ने वृंदावन में गोवर्धन अभी जहाँ पर है वहाँ पर विराजमान किया। यमुना नदी वैसे ही प्रभात थी। और उसके पश्चात कृष्ण ने 7 साल की उम्र में रासलीला रचाई, उसका आरंभ किया शरद पूर्णिमा को। और उसके पश्चात कृष्ण ने ब्रज के हर एक कर्ण पर रास रचाया। ऐसा कोई भी कर्ण नहीं है बरसाने में, नंदगांव में, किधर भी की जहाँ पर रास नहीं हुआ है। फिर भी उनकी रास के कुछ बहुत अति प्रिय स्थल है जहाँ पर वो, उनका फेवरेट स्थान है वो, जहाँ पर उनको रास करना बहुत अच्छा लगता है। तो उनमें से एक है गोवर्धन। और गोवर्धन वैसे ही भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जो, या तो रामलीला में वरदान दिया था कि आप भी अभी आ जाओ सेतु बंध में, अपना स्थान ले लो और हम लोग चरण रखेंगे और चले जाएंगे लंका में, फिर हवाई जहाज से रिटर्न जर्नी हमारा। क्यों, पुष्पक विमान से गए ना वो, तो अभी कुछ समय का संग है। या तो ऑप्शन नंबर 2 है कि मैं अगले अवतार में आऊँगा और बहुत समय तक आपके इर्द गिर्द पूरी अंतरंग लीला करूँगा। तो गिरिराज ने कहा कि ठीक है, प्रतीक्षा करना ही अच्छा है, प्रतीक्षा बहुत अच्छी होती है, उससे बहुत अच्छे अच्छे फल मिलते हैं उसके बाद में। तो पूछरी का लौटा बाबा जो है, ये सब संदेश हनुमान ने दिया गिरिराज को। तो गिरिराज जी ने हनुमान को कहा कि मैं वेट करूँगा, लेकिन इतना समय वेट करना मेरे लिए भी कठिन होगा क्योंकि अभी भी मिलने वाले थे लेकिन अभी नहीं मिल रहे, तो मेरी उत्कंठा और बढ़ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप दे दो, मेरा साथ दे दो आप, ताकि मैं आपके साथ सहन कर पाऊँगा विराय को। तो हनुमान जी गिरिराज के उत्तर दिशा में कोने में लौठा बाबा, मुछरी का लौठा बाबा बनकर रह गए हैं, और दोनों ने मिलकर कई हजारों वर्ष लाखों वर्ष तक विरह सहन किया। उसके बाद प्रभु का जन्म हुआ, उसके बाद प्रभु कुछ समय के बाद गोवर्धन में आए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार सबसे पहले भगवान ने गौचारण गोवर्धन में किया। राधा वल्लभी संप्रदाय के जो चाचा जी नाम के आचार्य हैं, उनके अनुसार प्रथम गौचारण संकेत वन में हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों के अनुसार ये गोवर्धन में हुआ। सो इस प्रकार का गोवर्धन का महत्व है। तो उस गोवर्धन में एक बार मानसी गंगा जहाँ प्रकट हुई, उसके उत्तर दिशा में, मानसी गंगा के उत्तर दिशा में भगवान ने आकर मुरली बजाई शाम को, यानी सबको निमंत्रण दिया, आइए रासलीला के लिए। तो विशिष्ट स्वर है जो बजाते हैं गोपियों के लिए, कौन सा स्वर है वो? पांचवा स्वर मुरली से, और सबको बुलाया। और अभी सब लोग भाग भाग के रास में आ ही रहे हैं तो अचानक बहुत भयंकर ध्वनि हो गई, कोई राक्षस आया है और गर्जना करते हुए, ऐसी भयंकर ध्वनि हुई तो सब लोग डर गए, बादल भी तितर बितर हो गए। बहुत भयंकर, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होता है ना, वैसे भयंकर ध्वनियाँ बार बार होने लगी। तो सब लोगों ने देखा, यहाँ तो मुरली बज रही थी, अभी क्या हो रहा है? तो पता चला कि एक बहुत विशाल बैल लाल लाल आँखों से क्रोधित भाव में गोवर्धन की ओर भाग के आ रहा है, और उसके जो चार पैर जमीन पर डाल रहा है वो आते हुए, तो हर एक पैर के आघात के साथ पृथ्वी के अंदर जो जलाशय है वो ऊपर फव्वारे की तरह उड़ रहे हैं, हर एक के साथ। उसकी पूंछ जो है बादलों को यहाँ से वहाँ तितल बितर कर रही थी, उसके नाक से जो हवा जा रही थी उससे पेड़ गिर रहे थे, इट्स लाइक हरिकेन। हरिकेन का मतलब क्या? झंझावात, चक्री बादल। और वो जानबूझकर पर्वतों की आकार का मल वहाँ डाल रहा था, और इतना मूत्र छोड़ रहा था कि अनेक नदियाँ निर्माण हो गई, ऐसे गलिच्छ विभत्स सा आतंक निर्माण किया इस प्रकार का कि सब जगह बदबू छा गई, मल पदार्थ के पर्वत खड़े हो गए इधर उधर सब जगह पर। और इतनी जोर से गर्जना कर रहा था कि गर्भवती गोपियों के गर्भपात हो गए, वो पेड़ों को आलिंगन देने लगे, बचाओ बचाओ श्याम सुंदर जी, कृष्ण बलराम बचाओ। तो ये सब बहुत बड़ा आतंक है हमारे लिए, एक ही आतंक काफ़ी, इसमें चक्रीवादल आ गया तो भी हम लोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ भूकंप भी हो रहा है, जमीन से पानी फट रहा है, पृथ्वी विदीर्ण हो रही है, और भयंकर ऐसा हर प्रकार से वातावरण निर्माण हो गया। फिर कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने मुरली को उधर रखा, उसको चैलेंज किया, तो उसको लगा इतना सा बालक मैं पहाड़ जैसा, तो वो बहुत क्रोध से उसके ऊपर टूट पड़ा। तो भगवान ने उसको सिंगों से हिला पकड़ा और जोर जोर से हिलाया और पटक दिया, फिर उसने भी भगवान को सिंह में उठाया और जमीन पर पटक दिया, फिर भगवान ने उसने पूंछ को उठाया और जोर से घुमाया और फिर पटक दिया, कुछ समय वो तिलमिला उठा, उसने भगवान को उठाया और पटक दिया, फिर भगवान ने फिर उसको उठाया और आकाश में फेंक दिया, फिर वो जमीन में धड़ करके गिर गया, कुछ समय बेहोश रह गया, और फिर होश में आया और क्रोधित होकर फिर भगवान को उसने उठाया और फिर आकाश में फेंक दिया, फिर भगवान भी जमीन पर आए, फिर वो क्रोध से अपने सिंगों से पृथ्वी को रौंदने लगा, लाल रंग के पत्थर उखाड़ लिए और भगवान की ओर फेंके, और भगवान ने वो लाल रंग के पत्थर कैच किए और फिर उसके ऊपर फेंके। ऐसे तैसे बहुत समय तक युद्ध चला, कहते 2 घड़ी तक युद्ध चला, 48 मिनट्स, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी तक ऐसा घमासान युद्ध चलता रहा, सब गोपियाँ ग्वाल बाल आकाश में देवता सब लोग देख रहे हैं क्या होगा इसका नतीजा, परिणाम क्या होगा। फिर भगवान ने कहा बस हो गया, अभी एक सिंह उसका उखाड़ लिया और वो सिंह लेकर उसके शरीर में अनेक बार घुसा दिया भगवान ने, उसके साथ उसको इतनी बार लत्ता प्रहार किया भगवान ने, इतनी बार लत्ता प्रहार किया कि वो एकदम निश्चेष्ट हो गया। उसको उठाया और फेंक दिया और वो फिर मर गया। इस प्रकार से अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया। गर्ग संहिता में बहुत सुंदर इसका विस्तार रूप में वर्णन दिया है, भागवत में भी दिया है, ज्वाइन करेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन आएगा उसका कि कितनी सहजता से, कितनी कुशलता से भगवान ने अरिष्टासुर बैल के साथ वध किया। जैसे बैल से बैल का वध हुआ तो अचानक एक वो बैल जो था वो मर गया, अचानक एक सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हो गया भगवान के सामने और दंडवत किया उसने भगवान को। भगवान ने जैसे कुछ जानते ही नहीं ऐसे पूछा, आप कौन हो? तो भगवान उसने भगवान को कहा, आप सब लोग ध्यान से सुन रहे ना, वो मुझे गारंटी मिलेगी तो ही यहाँ पर यहाँ से कुछ निकलेगा। सो उसने कहा कि मैं वर तंतु हूँ, मैं बृहस्पति का शिष्य था और हूँ, और मैं एक समय बृहस्पति महाराज के देवता के गुरु जो हैं उनके कक्षा में गया था यानी पढ़ने के लिए, तो मैं ऐसे पैल फैला के बैठ गया ऐसे। आमतौर पे जब बैल बैठता है ना तो वो ऐसा पैर फैला के बैठता है, बैल को ऐसा गाय जैसा बैठने को नहीं आता है, गाय कैसे पैर मोड़ के ऐसे बैठती है ना, वेरी रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड काऊ। बैल जब भी नीचे बैठता है तो वो पूरे कभी ऐसा पैर मोड़ के नहीं बैठता है, वो ऐसे पैर फैला के सो जाता है। तो ये ऐसे बैठ गया, तब बृहस्पति महाराज ने उनको बताया कि ठीक से बैठो, प्रभुपाद बोलते हैं ना जप में सिट प्रॉपरली, तो आर यू ऑल सिटिंग प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, मैं नहीं कह रहा हूँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सिट प्रॉपरली, तो वे ऐसे ही बैठे रहे। तो बृहस्पति जी ने सोचा कि देवताओं के राज्य में बैठकर ये जो वरतंतु देवता है वो अगर अशिष्ट हो रहा है, इस प्रकार से शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है, तो आगे फिर मनुष्य लोग पृथ्वी पर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने शाप दिया उसको कि बैल के जरा से पैर फैल के बैठ रहा है, जा बैल बन जा। उसी क्षण वो बैल हो गया उधर के उधर ही, जा पृथ्वी पर जन्म ले। तो फिर उसका जो भी कुछ आलस्य था, जो भी कुछ था, वो खत्म हो गया, एकदम होश में आ गया। वो दंडवत के महाराज माफ़ी की क्षमा चाहता हूँ, कुछ उच्छाप दीजिए मेरी गलती के लिए, मैं बैल तो बन ही गया हूँ। तो उन्होंने कहा जब वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में कृष्ण आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। बहुत लाखों साल का समय था। फिर ये जो बैल है वो अभी बैल बता रहा है, मतलब वरतंतु बता रहे हैं कि मैं फिर बांग्लादेश में जन्म लिया। और इस बांग्लादेश, बांग्लादेश जहाँ बंग भाषा बोली जाती है, फिर वहाँ पर मैंने दुष्टों के साथ संग किया, इसलिए मेरा नाम अरिष्टासुर पड़ा। फिर मैं नरकासुर भौमासुर का साथीदार बना, हमारा एक चंगुल बना पूरा, शंबरासुर प्रलंबासुर अगासुर बकासुर पुतना, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट बताई, इनके संग में रहा मैं और मैं बहुत भ्रष्ट हो गया। फिर मैंने बहुत तप किया और बहुत सिद्धियां प्राप्त की, कभी मनुष्य शरीर में कभी बैल शरीर में, और आपने मेरा उद्धार किया। क्या कहें आपको, अरिष्टासुर का भाग्य देखो, वो जो भगवान से ये बातें कर रहा है उसका तेज जो है ना वो चारों ओर फैल रहा है, सब गोपियां ग्वाल बाल में देख रहे हैं, इतना दिव्य तेजस्वी पुरुष, उसका सब जगह दिव्य तेज फैल रहा है। और जब संभाषण समाप्त हुआ तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, तो तत्क्षण सबकी आंखों के सामने आकाश से एक दिव्य विमान आया, एकदम क्लियर था वो कि वैकुंठ से आ रहा है। और वो दिव्य विमान पर बहुत तेजस्वी चार पुरुष थे विष्णुदूत, वो जमीन पर उतरा और बड़े सम्मान से उन्होंने उनको माला पहनाई और उन मालाओं से सुशोभित होकर वरतंतु दिव्य शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में उसमें आरूढ़ हुए और सबके सामने गोलोक वृंदावन चले गए। हरे कृष्णा, दिस इज पार्ट वन। ये सब लीला समाप्त हो गई, फिर भगवान अपने बाल स्वरूप के मूड में आ गए और गोपियों से जाके मिले, क्योंकि वो मुरली की धुन को प्रतिसाद देकर आए थे ना, तो मिले तो उनको लगा अभी अपना लीला शुरू करते हैं, चले दूर खड़े रहो, डोंट कम क्लोजर। बोले क्या हुआ? आपने गोवंश का वध किया है, अरे बाबा गो वंश नहीं था, वो राक्षस था, फिर भी वो बैल था, हमारे लिए बैल पिता के समान है। उनको पूछते हैं, आप चाहे कुछ भी कहो, आपने गोवंश की हत्या की है, चलो ठीक है भाई मान जाता हूँ गोवंश की हत्या की है, तो आप बताओ क्या करना है, मैं ऐसे आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। बोले आपको सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना होगा। हाँ कोई बात नहीं। फिर कहते हैं मुझे क्या ज़रूरत सब तीर्थों में जाने की, मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला लेता हूँ। और सबका स्मरण किया और ये भी बताया कि अगर मैं जाऊँ भी सब तीर्थों में और आप संग में नहीं रहेंगे तो आप कहेंगे आप कहाँ गए, आप झूठ बोल रहे हो, आप तो मुझे हमेशा झूठा कहते हो। तो फिर मैं करके भी आऊँगा तो भी आप बोलेंगे नहीं किया आपने, तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्या? उससे अच्छा मैं सबको यही बुलाता हूँ। सबका स्मरण किया, सब तीर्थ स्थान जो है वो व्यक्ति स्वरूप होते हैं, कोई देवी होते हैं, नदी, कोई स्थान, वन, पहाड़, जो भी स्थान होते हैं वो पुरुष रूप होते हैं। वो सब पुरुष और स्त्री रूप सभी दिव्य तीर्थ देवताएं वहाँ प्रकट हुए। अब कृष्ण कहते हैं देखो आ गया ना सब। तो कृष्ण राधा रानी कहती है किधर है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे। तो भगवान ने उनको इशारा किया और सब लोग एक एक आके उन्होंने दर्शन दिया। अभी मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन कहते हैं कि 84,000 तीर्थ है इस ब्रह्मांड में और सारे वहाँ प्रकट हो गए। कोई कह रहा मैं महारानी, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं नदी ताम्रपर्ण में हूँ, मैं गंगा नदी हूँ, मैं यमुना नदी हूँ, मैं क्षीर सागर, बहुत सारे तीर्थों का वर्णन वहाँ पर आता है। सभी व्यक्ति रूप देवताएँ, तीर्थ रूप देवताएँ वहाँ पर अपने परिचय देती है। और फिर बड़े ऐट के साथ कृष्ण वहाँ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने लात मार मार कर अष्टासुर का वध किया था, जहाँ पर जमीन भी बहुत खंडित हो गई थी। उन्होंने और जाकर अपना पैर मारा, एक बड़ा गड्ढा किया और सबको इशारा किया यहाँ पर आ जाओ। तो सभी तीर्थ वहाँ प्रकट हुए, लेकिन स्वरूप तो जल का बना, क्योंकि बाकी सारे तीर्थ जो है वो सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। ऐसे नहीं कि पर्वत भी आए तो उतना पर्वत कहाँ पानी का तो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो जल स्वरूप जो है वो प्रकट रहा, बाकी सब सूक्ष्म स्वरूप में प्रकट हो गए। और फिर श्याम कुंड का निर्माण हुआ, ये इसकी बात कर रहा हूँ पृथ्वी तल की। फिर सभी ग्वाल बालों ने श्याम सुंदर के साथ उसमें स्नान किया और तथाकथित गोपियों के इच्छा के अनुसार वो बैल को मारने के गोवंश हत्या के पाप से मुक्त हो गए। फिर वो गोपियों से मिलने आए और उन्होंने कहा कि अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो राजा रानी कहते क्यों? उन्होंने कहा आपने अरिष्टासुर का पक्ष लेके हमसे विवाद किया, तो अभी उस पाप के लिए आप भी, जैसे आपने कहा था कि मैं गोवंश की हत्या से दूषित हो गया हूँ, आप भी दूषित हो क्योंकि आपने राक्षस के पक्ष में मुझसे विवाद किया, तो आपको भी सभी तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करना होगा। और फिर धीरे से कहते हैं बाय द वे मेरा कुंड तो बना हुआ है, उसमें आप स्नान कर सकते हो, रेडीमेड है। बोला ऐसे रेडीमेड कुंड में हम स्नान नहीं करते हैं। क्यों? आपने जो स्नान करके वहाँ पर अरिष्टासुर को मारने का पाप छोड़ा है उसमें हम कैसे स्नान करेंगे, उल्टा हम दूषित हो जाएंगे। अभी अच्छे हैं, आपके यहाँ स्नान करेंगे तो वो जो पाप है उसके जल में वो हमको मिलेगा, हम अपना कुंड बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने कंकण को तोड़ तोड़ कर वहाँ पर थोड़ा गड्ढा बनाना शुरू किया। और ऐसा भी वर्णन है कि अरिष्टासुर का एक पैर का निशान था उसमें, उसको और खोदा उन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा पैर मारकर उसने जमीन के अंदर के जल स्रोतों को प्रकट किया था फव्वारे के रूप में, तो उसी को थोड़ा बड़ा किया उन्होंने। इसलिए इस कुंड को कंकण कुंड भी कहते हैं, एक नाम कंकण कुंड भी है ओरिजिनल। तो फिर उन्होंने एक वर्णन में ऐसे आता है कि मानसी गंगा से लाइन लगा के मटके ट्रांसफर करना शुरू किया, 2 घड़ी तक प्रयास किया, फिर 48 मिनट्स, बहुत लंबा समय चल रहे हैं, 2 घड़ी इन्होंने युद्ध किया, फिर बीच में कुछ वार्तालाप हुआ, फिर 2 घड़ी राधा रानी ने कुंड बनाने का प्रयास किया, फिर इतने सफल नहीं रहे, सबका पसीना छूट रहा है। कृष्ण बाल बाल सब खड़े हैं देख रहे हैं, अरे इतना श्रम क्यों करते हो, देखो खड़े हैं अभी भी आपके लिए सभी देवताएं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनको अवसर देंगे सेवा का। तो फिर 3 लोगों को इशारा करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि 3 प्रमुख नेताओं को उसमें से नीचे बुलाते हैं, बोले विनती करो। तो फिर वो चरणों में गिर के विनती, राजा रानी इतनी क्यों मेहनत कर रहे हैं आप, हमें सेवा दो, एक क्षण में आपका कुंड भर देंगे। तो बड़ी कृपालु राधा रानी उनको सम्मति देती है और फिर सारे जो तीर्थ हैं वो उनके कुंड में प्रकट हो जाते हैं। और ये अभी अलग 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 वर्णन है, विविधतापूर्ण वर्णन है। ये जब हो रहा था तो श्याम कुंड का जल ऐसा ओवरफ्लो होके राधा कुंड में आ गया। और एक भी वर्णन है कि ऊपर से भी आकर मिल गया और नीचे से भी छेद करके आके मिल गया। इतनी भाव विभोरता हुई उस समय कि जल उछल रहे हैं सब यहां से वहां। फिर जब राधा कुंड का निर्माण हुआ तो राधा रानी ने अपने सखियों के साथ स्नान किया। फिर प्रेम के कारण कृष्ण ने और ग्वाल बालों ने उस राधा कुंड में स्नान किया। फिर प्रेम के कारण राधा रानी ने श्याम कुंड में भी स्नान किया सब सखियों के साथ। और ये घोषणा की राधा रानी ने कि अगर आप इसके बाद में 100 बैलों का भी वध करते हैं फिर भी मैं रोज आपके कुंड में आके स्नान करूंगी। तो समय क्या है उसका, 11:48 AM, 11:48 सुबह के समय राधा रानी अपने गिने चुने सखियों से रोज श्याम कुंड में स्नान करती है, जहाँ पर आज पांडव घाट है। तो पांडव वृक्ष बन के खड़े हैं, उस घाट पर रोज वो स्नान करती है 11:48 hours। तो कृष्ण ने वरदान दिया कि ये इतने प्रसन्न हो गए कृष्ण उस कुंड को देखकर, राधा कुंड को। तो उन्होंने कहा कि ये कुंड नहीं है, ये स्वयं द्रवरूप राधा रानी का प्रेम है। बहुत गौरव किया, लेकिन प्रमुख 3-4 बातें कही कि ये कुंड जो है मुझे, ये कुंड स्वयं द्रवरूप राधा रानी आप स्वयं का प्रेम यहाँ प्रकट है, ये आपका ही स्वरूप है और मुझे ये आप जितनी प्रिय है उतना ही प्रिय होगा। जो भी इसमें स्नान करेगा वो मुझे आप जितनी प्रिय है वो भी मुझे उतना ही प्रिय हो जाएगा। और फिर राधा रानी ने कहा कि आपका कुंड में मुझे आप जैसा ही प्रिय होगा, वो आपका प्रेम उसमें उपलब्ध होगा। ऐसे दोनों ने बहुत भर भर के एक दूसरे को आशीर्वाद शुभ वचन कहे और राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हो गए। अभी राधा कुंड और श्याम कुंड सर्वोच्च स्थली है। पूरे निर्माण में राधा कुंड और श्याम कुंड के सामने कोई तीर्थ स्थान नहीं है। राधा कुंड और श्याम कुंड प्योर शुद्धतम माधुर्य रस का स्थान है। वहाँ पर सखा भी आते हैं तो माधुर्य लीला के ही संबंध में आते हैं। जैसे राधा रानी का सूर्य पूजा करने के लिए राधा रानी पुजारी ढूंढते रहती है तो मधुमंगल और कृष्ण वहाँ आ जाते हैं, तो मधुमंगल भी आ गया ना, वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो राधा रानी को लीला करने के लिए कृष्ण पूजा पुरोहित बन जाते हैं। सर मुंडा के बुरा जनेऊ पहन के बोले, दूर रहो मैं स्त्री से बात नहीं करता, मधुमंगल तू बात कर ले, इस प्रकार से लीला करते हैं। तो वैसे आते हैं ग्वाल बाल, सुबल उज्ज्वल भी आते हैं जो बहुत गोपियों के पास में रहते हैं, वो निगोशिएशन करते रहते हैं। जब भी कुछ समस्या होती है तो सुबल और उज्ज्वल वो संभाल लेते हैं, वहाँ से ललिता संभाल लेते हैं, यहाँ से सुबल उज्ज्वल संभाल लेते हैं। तो प्रवेश है लेकिन माधुर्य रस के लिए ही प्रवेश है उनको। कभी हमने पढ़ा नहीं होगा कि यशोदा मैया वहाँ आ गई कृष्ण को ढूंढे ढूंढे, नंद बाबा आ गए, प्रभावती आ गई, नहीं। तो ऐसा उत्कट स्थान है, शुद्धतम माधुरी रस। तो आप कहेंगे बरसाना भी क्या है, बरसाने में भी शुद्धतम माधुरी रस है, लेकिन केवल माधुरी रस नहीं है, वहाँ वृषभानु महाराज कीर्ति मैया का माधुर वात्सल्य प्रेम भी उनके लिए है, उसका भी लीला चलती रहती है। सखा सखी उनकी सख्य लीला भी चलती रहती है। ये मत समझना कि कृष्ण के लिए सखा सख्य भाव है सखाओं के साथ, राधा रानी का भी सखा भाव सखी भाव उनके सहेलियों के साथ में लीलाएँ होती रहती है। ये नहीं कि हर समय कृष्ण से ही मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी फूल बिनते हैं, सांझी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं एक साथ में, बहुत सारा काम करते हैं। तो बरसाने में भी बहुत उच्च भाव है, या राक्षस भी कोई प्रवेश नहीं किया फिर भी यहाँ पर 3 रस साथ में चलते रहते हैं, लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड पर केवल माधुर्य रस चलता है। द हाइएस्ट प्लेस और हाइएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ माधुर्य रस, उसको क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, सर्वोच्च रस 5 रसों में से। और राधा रानी के कुंड में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी अदृश्य चीज़ें हैं। जैसे ही राधा रानी ने अपना कुंड का निर्माण किया, कुंड का निर्माण हुआ, तो उसमें वृंदा देवी और सभी और ललिता देवी इन सभी ने मिलकर उसमें एक सुंदर ब्रिज बनाया जो आज अदृश्य है। और चारों तरफ से आप वो ब्रिज में से जाकर बीच में एक सुंदर कमल का निर्माण किया और उसमें से वो प्रवेश करते हैं और बीच में सिंहासन रखते हैं और उनको दोनों को बिठाते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएँ करते हैं, फिर नौका विहार करते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड ये भक्तों के लिए जब तक यहाँ है तब तक अंतिम गंतव्य स्थान है, उसके आगे कोई स्थान नहीं है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थों को भगवान ने निर्माण किया है और आगे ही वे करेंगे, वो कोई लिमिट नहीं उसका कि भाई हो गया अभी फिनिश, नो मोर प्रोडक्शन। भगवान तो अनंत लीला करते हैं, अनंत तीर्थस्थल भी निर्माण करते रहते हैं, वो सारे तीर्थस्थल प्रवेश करते रहते हैं और सदैव उपस्थित रहते हैं। और राधा कुंड श्याम कुंड में आप गए तो आपको फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी उतनी श्रद्धा है तो। और एक तो आप दर्शन करने के लिए सबका उपस्थिति का लाभ लेंगे, सब तीर्थों का जल के रूप में स्नान भी करेंगे, लेकिन जो भाव वहाँ पर आपको प्राप्त होगा वो कहीं किसी तीर्थ में नहीं प्राप्त होगा। राधा कुंड के किनारे पे राधा रानी परम 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 अति परम करुणा में भाव में रहती है। एक बार चल रही थी राधा कुंड के किनारे तो पैर में कुछ खटक गया उनके, तो सखियों से पूछा क्या है, तो सखियों ने कहा कि ये क्या कहते हैं मादा सुअर है जो कल ही देहांत हो गया उसका, उसकी आपको ठेठ लग गई। तो राधा रानी ने देखा और कहा कि ले लो अपने पार्षद में ले लो उसको। तो तुरंत वो सखी वृंद में प्रवेश किया, उस जीव ने सखी बनकर प्रकट हो गई वहाँ पर तुरंत। राधा कुंड किनारे चलते हुए एक दिन एक भेड़िए के रोने की आवाज़ आई जो शिवखोर में रो रही है। तो राधा रानी ने कहा जाओ ललिता देखो कौन रो रहा है, मेरे क्षेत्र में कोई भी दुख नहीं अनुभव कर सकता है। तो ललिता सखियाँ सब गई और देखा तो कुछ बच्चे एक भेड़िया को बहुत परेशान कर रहे थे, वो भाग गई और उसको जमीन के बिल में घुस गई, तो बच्चों ने ऊपर से लकड़ी लगाई आग लगा दी, वो बहुत चीख रही थी, रुदन कर रही थी, आक्रोश कर रही थी। तो उसके पश्चात उन्होंने बच्चों को भगाया, अग्नि निकाला और वो रोते हुए कष्ट पीड़ित त्रस्त भेड़िए को राधा रानी के पास लेके आए राधा कुंड में। राधा कुंड में राधा रानी ने उस मादा भेड़िया को तुरंत अपनी सखी बना लिया एक एक क्षण के अंदर, ऐसी करुणा है। कहते हैं जैसे हमारी भाषा में कि इतना बड़ा नल फुल फोर्स में चल रहा है, आपको केवल अपना बकेट लेके जाना है, ऐसा समझेंगे आप तो विचार करिए, ऐसी कृपा वहाँ बरसती रहती है अविरत अथक न रुकते हुए अखंड। बस लेने वाले के पास कितना पात्र है उस पर ये निर्भर रहता है। इसलिए कल के दिन जब हम राधा कुंड श्याम कुंड जाएंगे तो आपको मुझे सब लोगों को एक वादा करना होगा कि वहाँ पर भगवान नाम और भगवान चर्चा के अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे, मौन रखेंगे। मौन का वास्तविक अर्थ क्या है कि हम केवल भगवान के विषय में बोलेंगे और कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें अगर टाल सकते हैं तो नहीं करेंगे, उसको टालेंगे। कभी कभी होता है ना सब बेफजूल की बातें हम करते हैं, सिंफुल पापपूर्ण बातें नहीं करते लेकिन ऐसे ही बिना मतलब की करते रहते हैं, नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, वो सब बातें आप त्याग देंगे। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज ने राधा कुंड में कैसे उस क्षेत्र में कैसे जाना है इसके विषय में बताया है। और ये लेक्चर किधर दिया, कुसुम सरोवर में, किसी बार उद्धव कुंड में दिया, क्योंकि उद्धव कुंड उस तरफ है गोवर्धन के, कुसुम सरोवर इस तरफ है एकदम अपोजिट है, और वहाँ से ऐसे जाएंगे तो राधा कुंड, ऐसे जाएंगे तो राधा कुंड श्याम कुंड, ऐसे है दक्षिण कोना है गोवर्धन का, वो उत्तर कोना जो है वो पूंचड़ी का लोटा बाबा का है, दक्षिण कोने में राधा कुंड श्याम कुंड है। उसको आचार्य कहते हैं कि वो कृष्ण की यानी गोवर्धन की आँखें हैं वो दो, राधा कुंड श्याम कुंड। और गोवर्धन स्वयं कृष्ण भी है और स्वयं मोर के आकार में भी है, तो उस मोर की दो आँखें कृष्ण की दो आँखें हैं वो, तो वो उसको कहते हैं राधा कुंड घेरा यानी परिसर यानी एरिया। वो उन्होंने वही लेक्चर दिया कि भी राधा कुंड घेरा शुरू हो रहा है, यहीं से आपको मौन रखना है, कुछ नहीं बोलना है। 1964 86 में हम लोग सब लोग राधा कुंड गए थे सबसे पहले यात्रा में, तो महाराज ने हमको यात्रा स्नान करने के लिए मना कर दिया। फिर 12 साल हम जाते रहे, वो किसी भी समय स्नान करने का अलग नहीं किया। 98 में सच्चिदानंद स्वामी भी हमारी यात्रा में, तब वो वहाँ पर अपना व्रत कर रहे थे कार्तिक का, तो वो भी जुड़ गए। और मुझे याद है 7:30 PM को हम लोग वहाँ पहुँचे थे, बड़ा अंधेरा हो गया था उस समय। उस अंधेरे में राधा कुंड श्याम कुंड के किनारे बैठकर दोनों ने मिलकर 45 मिनट प्रवचन दिया कि यहाँ पर कैसे भाव होना चाहिए। बहुत बहुत गंभीर और गहरा भाव की तैयारी हमें करनी है। हम कोई स्विमिंग पॉन्ड पे नहीं जा रहे हैं, कोई अच्छे सुंदर जलाशय, वेल मेंटेन, वेल लिट, लाइट लगाए हुए, यहाँ बोटिंग भी चल रहा है, थोड़ा फन आराम करने के लिए नहीं जा रहे हैं हम, जो हमारी योग्यता नहीं है ऐसे स्थान पे जा रहे हैं। वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, बट आचार्यों के कृपा से वो स्थान प्रकट है, इसलिए हम अपने शरीर को जो कर्म से भरा हुआ है, सकारात्मक नकारात्मक कर्मों के प्रभाव से भरा हुआ है, प्रभावित है, ऐसे शरीर को लेकर जा रहे हैं, जो दुर्गंध वाला भी है, जो पापी प्रवृत्ति का भी है, और हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो इसलिए जितनी आप गंभीरता रखेंगे उतनी आपका लाभ होगा, उतना लाभ होगा। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा कि विश्व के ऐसा कोई आचार्य नहीं है जो राधा कुंड में न आया हो, किसी भी संप्रदाय का हो। और जितने विश्व के प्रसिद्धतम आचार्य हुए हैं, जैसे पुष्टिमार्ग के वल्लभाचार्य और बहुत सारे उनके शिष्यगण, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य और हमारे संप्रदाय के सभी गोस्वामी, सारे लोगों ने वहाँ पर आके भजन किया है और अधिकतर लोगों की भजन कुटिया वहाँ पर है। हमने एक दिन वहाँ रखा है, लेकिन 3 पूरा दिन भी आप वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ के पूरे स्थानों का दर्शन नहीं कर सकते आप, इतने अनंत स्थान है वहाँ पर। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो जितने विग्रह वृंदावन में थे, केवल हमारे संप्रदाय के नहीं, राधा वल्लभ जी के विग्रह, जितने भी विग्रह थे बांके बिहारी जी के, वो सब ने राधा कुंड के तट पर विश्राम किया था, सबको उनके राह पर रखा था। राधा कुंड के तिना पर अनगिनत मंदिर है। जब राधा कुंड का निर्माण हुआ तो पूर्णमासी के इच्छा से वृंदा देवी के निर्देश में, नेतृत्व में 8 कुंड भी और बनाए गए ललिता विशाखा आदि सखियों के लिए। तो वहाँ पर ऐसे कमल जैसे व्यवस्था है, बीच में राधा कुंड श्याम कुंड है और चारों तरफ 8 कुंड है अष्ट सखियों के, ऐसा पूरा वहाँ पर वातावरण है। सब सखियों ने अपना अपना कुंज भी बनाया और अपना अपना कुंड भी बनाया। राधा कुंड भी राधा रानी के कुंज में है और बाद में सभी सखियों ने कुंज बनाया, उसके अंदर भी उनके कुंड बनाए गए। और सभी संप्रदायों के मंदिर है, इतने सारे कुंड है और बहुत सारी लीलाएँ हैं, वो भी सब लोग का प्रतीक वहाँ पर है। जिन जिन लोगों ने भजन किया उनकी भजन कुटी है, जिन्होंने शरीर त्याग दिया उनकी समाधि है। और हमारे संप्रदाय के लिए सर्वोच्च बात यह है कि श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन राधा कुंड के किनारे किया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज 90 साल की उम्र में राधा कुंड के किनारे बैठकर श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन किया उन्होंने। रघुनाथ दास गोस्वामी उस तट पे रहे, महाप्रभु जी के जाने के बाद, उनके जगन्नाथपुरी के बहुत दीर्घ संग के बाद में वो राधा कुंड में आए, महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए तो उनको लगा कि अभी आत्महत्या करनी चाहिए, इतना विरह भाव में आए और गिरिराज के ऊपर चढ़कर मैं अभी कूद जाऊँगा, ऐसे मन में विचार कर रहे थे। उस समय सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि कितना बड़ा अपराध का बात सोच रहे हो आप, मन की बात पहचान ली उन्होंने कि मन में क्या चल रहा है, किसी के दूसरों के वस्तु नष्ट करने का क्या अधिकार है आपको। बोल, मैं किसकी वस्तु नष्ट कर रहा हूँ, आपका शरीर आपने चैतन्य महाप्रभु को दे दिया है, अभी वो उनकी संपत्ति है और उसको आप नष्ट करने का निर्णय स्वयं ले रहे हो उन्हें पूछे बिना। आपका शरीर केवल महाप्रभु जी सेवा के लिए, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, क्यों ना आप अपने विरह को कम करने के लिए अपने चैतन्य महाप्रभु के साथ किए हुए संग का अनुभव और वार्तालाप भक्तों के लिए करें, ताकि आपके विरह का अनुभव कम होगा। तो फिर उन्होंने राधा कुंड किनारे बैठकर चैतन्य महाप्रभु की उत्तर लीलाओं का वर्णन किया। उन सभाओं में हर रोज कृष्णदास कविराज बैठा करते थे और नोट्स बनाते थे। तो जो चैतन्य चरितामृत का उत्तरार्ध है वो उन्होंने रघुनाथ दास जी के प्रवचनों से लिया, और जो पूर्वार्ध है वो मुरारी दास के खर्चा और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के नोट्स से लिया और सबको मिलाकर उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत बनाया। ये चैतन्य चरितामृत सभी शास्त्रों का सर्वोत्तम सार है, सर्वोत्तम भाव भगवद गीता का, भागवत का, जो भी आप कह रहे हो, जो भी शास्त्र रूप में प्रकट है, उस सबका सार प्रेम रूप में चैतन्य चरितामृत में प्रकट है। केवल जो प्रेमी भक्त है उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। वैसा दिव्य शास्त्र 90 साल की उम्र में आंखों से ओझल, कानों से ओझल, ये स्थिति में केवल दिव्य कृपा से उन्होंने वहां पर संपन्न किया कार्य। ऐसे बहुत सारे लोगों ने वहां पर अलग अलग लीलाएं की हैं। तो कल हम वहां जाएंगे, आपसे एक ही विनती है कि हमारे पास स्नान करने का समय नहीं है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 8 प्रकार के स्नान होते हैं। शरीर डुबकी लगाना ये हो गया एक, लेकिन स्पर्श करना केवल ये भी एक स्नान है, आचमन करना ये भी एक स्नान है, जल का छींटा सर पे लेना ये भी स्नान है। यहाँ तक कि आपने अगर कल्पना की कि मैं राधा कुंड में डुबकी लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, तो भी आपका स्नान का लाभ मिलता है आपको। मुंबई में रहकर आप रोज स्नान करते समय बाल्टी से पानी लेते समय राधा कुंड श्याम कुंड करके स्नान करेंगे तो राधा कुंड श्याम कुंड आपके बकेट में पैदा हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ये उनका वरदान है, हमारे कहने से नहीं होता है। गंगा गंगा कहे तो गंगा आएगी, जमुना कहे जमुना आ जाएगी। जो आप इस नदी का नाम लेंगे वो प्रकट हो जाएंगे, राधा कुंड का श्याम कुंड का नाम लेंगे तो वो भी प्रकट हो जाएंगे। तो ये अनेक प्रकार के स्थान हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। मैं से कह रहा आपको 3 दिन भी लगाएंगे तो भी आपका दर्शन पूरा नहीं होगा। स्नान करने जाएंगे तो 1.5 घंटा जाएगा, क्योंकि राधा कुंड में स्नान करना होता है, फिर श्याम कुंड में स्नान करना होता है, फिर राधा कुंड में स्नान करना होता है। उसमें किसी से बात नहीं करनी होती है और चुपचाप मौन में दीर्घ गहरी प्रार्थनामय भावना में आपको करना है। मेरा अनुभव जो है वो 1.5 घंटे हो जाते हैं उसके अंदर। फिर कपड़े निकालना, कपड़े पहनना, फिर संवारना सपने आप को, फिर चालू करना, बहुत समय जाएगा। बहुत हमारे लंबा समुदाय है भक्तों का, इसलिए हम लोग आचमन स्नान करेंगे। और मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। हाँ, कल शायद समय नहीं मिलेगा, एक और आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, सावधानी का इशारा दे रहा हूँ। कल संडे है, सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, लेकिन कल संडे है। और संडे को वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, इसमें भयंकर भीड़ होती है। आज भी हमारे इतने दिनों के बीच में कितनी भीड़ है बरसाना में। आप भी जाएंगे दर्शन के लिए तो आपको जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी आना है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत भीड़ होगी। और कल का इतवार है और राधा कुंड की सभी गलियाँ छोटी छोटी है, तो मुझे वैसे भी चिंता है कि 200 लोगों के लेके कैसे घुसूँ मैं, कैसे प्रवेश करूँ और क्या कहाँ ले जाऊँ। ये अभी मेरे एक ही भावना है कि राधा कुंड श्याम कुंड में क्या दिखाना राधा रानी को, वही तय करेगी और वही दिखाएगी हमको। और मन में भी यही भाव रखना, अरे प्रभु जी आपने वो नहीं दिखाया, वो तो लिस्ट में था, वो आपने दिखाया नहीं। अभी मैं आपके घर पे आ गया ना, समझो मैं आपके घर पे आ गया, तो मुझे कहाँ बिठाना है, कौन से कुर्सी पर बिठाना है, किस दिशा में बिठाना है, कौन से कमरे में बिठाना है, क्या खिलाना है, और हाथ धोने के लिए किस बाथरूम में लेके जाना है, ये सब आप तय करते हो, मैंने तय करता। प्रभु जी आपका जो निजी बाथरूम है ना वहाँ पर मैं हाथ धोना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो हम सब लोग भगवान के धाम में आ रहे हैं, वो उनका घर है, निज धाम है, वो आपको प्रवेश दे रहे, यही भाग्य की बात है। लेकिन जब आप मेरे घर पे आते हो तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं तय करता हूँ। कुछ कुछ दिखाऊंगा, सब जगह लेके नहीं जाऊँगा आपको, मेरे अंतपुर में लेके नहीं जाऊँगा, और लेके भी जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी अरे आपने वो बेडरूम नहीं दिखाया यार, आपने वो कबर्ड में क्या दिखाया नहीं, ऐसे आप नहीं बोल सकते। उनको जो दिखाना है वो दिखाएंगे, जो उनके मन में। वैसे ही ठाकुर जी राधा रानी ये तय करती है कि आने वाले भक्तों को क्या दिखाना है और हमें क्या दिखने को मिला उसी में संतुष्टि माननी चाहिए। वही एक शिष्टाचार है मेहमानों का, अतिथियों का शिष्टाचार क्या है, अरे आपने जिलेबी खिलाया, लड्डू नहीं खिलाया, अरे मोहन थाल आपने सुना आप अच्छे बनाते हो लेकिन आपने नहीं खिलाया मोहन थाल, ऐसा नहीं कह सकते ना। उनको क्या बनाना है वो मेन्यू वो तय करते हैं जो आपको खिलाना है। उसी प्रकार से धाम में ये मेरे लिए परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने बताए हुए वचन है। जब मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा कैसा लगा आपको यात्रा, तो उसका आयोजक मैं ही था 1994 में, उसमें 425 भक्त थे, बहुत बड़ी भयंकर यात्रा थी, 8 बस थी उसके अंदर। आज सब लोग हंसेंगे जब 200-200 बसें होती हैं और 10,000 भक्त होते हैं, लेकिन उस समय की वो मैक्सिमम यात्रा थी। तो हम एकदम सकुशल व्यवस्थापक के रूप में महाराज को कहा, महाराज अगर यात्री लोग अगर थोड़ा तेज चलते ना तो रोज़ दो दो स्थान कैंसिल नहीं करने पड़ते। सोचा कितना हमने एनालिटिकल रिपोर्ट दिया और कितने हम भक्तों को सेवा करने के लिए आतुर हैं। तो महाराज का चेहरा एकदम गंभीर हो गया, एकदम गंभीर हो गया, जैसे कि गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी धाम में जाते हो कोई अपेक्षा मत रखना, जिस धाम में जा रहे हो वहाँ के भगवान आपको दिखाएंगे जो उनको दिखाना है, और आपको सिर्फ कृतज्ञ रहना है, बस यू हैव टू बी ओनली ग्रेटफुल एंड नथिंग एल्स। तो मुझे भी पता नहीं है, दिल में तो उमंगे बहुत है आपको कहाँ कहाँ ले जाऊँ, लेकिन वास्तव में वहाँ पर क्या होगा राधा रानी और श्याम सुंदर तय करेंगे, वही तय करेंगे आपको क्या दिखाना है, वहाँ पर क्या संभव होगा क्या नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भावना है यात्रा की, ध्यान रखना। चाहे चित्रकूट जाओ, मायापुर जाओ, वृंदावन जाओ, जमुना, किधर भी जाओ आप, वहाँ पर आपको क्या दिखाना है वो राधा रानी तय करती है, श्री जी की कृपा से होता है। पहले गए हो इस बार नहीं जा सकते हो, ये भी हो सकता है, इसलिए कृतज्ञ रहो, ऐसे रहो हमेशा, जो आपकी कृपा हो हमें स्वीकार है। और जो ऐसे भाव में रहता है ना उसको सबसे अधिक लाभ होता है दिव्यता का, भक्ति का, प्रेम का, कृपा का। तो इसलिए कल का दिन रविवार का है, आपसे सर्वोत्तम सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि मैं समझो राधा कुंड को आधा पार करके श्याम कुंड पहुंच गया और राधा कुंड के शुरुआत में ही अभी तक है, तो मैं जो जो कहते जाऊंगा खड़े खड़े वो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सब लोगों को विनती है कि सब लोगों को नोटबुक रखना है, थोड़ी डायरी क्यों लगना है, और अभी आजकल में तो मोबाइल आया हाथ में, बहुत सुंदर फाइल बना उसके अंदर, और जो आप देख रहे हैं उसको लिखो, कम से कम स्थान तो लिखो, वर्णन नहीं रहेगा तो बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। सब रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे प्रभु जी इसको लेके घूमने वाले हैं, मैं इसको लगा के घूमने वाला हूँ, जहाँ खड़े होंगे चालू ऑन और रिकॉर्डिंग होगा, तो उसका कंपाइलेशन होगा और उसका एक पूरी यात्रा का एक फिल्म आएगा पूरा यूट्यूब पर। लेकिन ये समझ के आप ऐसा इनअटेंटिव मत रहना, आपको वहाँ पर उस स्थान में जो भी ग्रहण कर सकते हो वो ग्रहण करना है, खुले दिल से, खुले हृदय से, खुले कानों से, खुली आँखों से जो भी ग्रहण हो रहा है वो आप ग्रहण करना ही है, उसी को आप स्मृति में रखेंगे जो आपने ग्रहण किया है। नहीं तो आपको फिर वो फल का ठेला ही याद आएगा जिसने आपको, जिसको आपने देखा था, है ना, जो आप देखेंगे वही आपको याद आएगा। तो आपका सारा ध्यान जो है वो स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, उस समय उसको सुनना है, उसको नोट करना है, और नहीं नोट करें शाम को जाके उसको लिखना है कि कितने स्थान राधा कुंड के देखे। तो हमारे तरफ से बहुत आपके सहयोग की आवश्यकता है। एक स्पीकर रहेगा जो साथ में चलेगा, जिसमें आपको सुनाया जाएगा, और सब लोगों को जितना हो सके हम साथ में रखेंगे, तभी बोलना शुरू करेंगे, फिर अगले स्थान जाएंगे, फिर वहाँ बोलेंगे। इस प्रकार से हम अपना परिपूर्ण प्रयत्न करेंगे अधिक से अधिक जगह में लेके जाने के लिए, लेकिन हमारे मन में भी जो योजना है वो हम भी स्वयं उसको कैंसिल कर सकते हैं स्थिति को देखते हुए, कि प्रभु जी अभी वहाँ नहीं जाएंगे, अभी आगे जाएंगे, वो समय हो गया है, क्योंकि वापस आने का भी एक समय है, फिर प्रसाद लेना है, फिर विश्राम करना है, फिर शाम को कथा करेंगे। दिन में कौन सी कथा करेंगे, उन स्थानों की खड़े खड़े कथा करेंगे, कुछ स्थानों की लंबी कथाएँ होती है वो शाम को बैठ के आराम से करेंगे, और कितनी भी प्लानिंग करेंगे, कितना भी कथा करेंगे, लंबी छोटी जो भी है, फिर भी आप राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन के अथाह सागर में से कुछ बिंदु भी ले सकते हैं। अनेक जन्म भी जाते रहेंगे तो भी आप ये सब दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाएं अनंत हैं, नित्य लीलाएं हैं, अनंत स्थान है। हम तो खाली उसको ऐसे टच करने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करने का प्रयास करें कृतज्ञ भाव में। तो राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा अगाध है और ये हमारा भाग्य है। और थोड़ा सा आपको मैं गोवर्धन के विषय में बताना चाहूँगा, ये हमारे गोवर्धन परिक्रमा का आरंभ है कल, तो राधा कुंड श्याम कुंड से हम करेंगे। हाँ प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे बाद में कि कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे पहुँचना, वो टेक्निकल बातें बताएंगे आपको, लेकिन सवेरे 7 बजे हम निकल जाएंगे, 7 बजे हम निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करके या लेके, साथ में ब्रेकफास्ट लेंगे तो साथ में भी खाते हुए आप रुक के खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि धाम में कहीं भी राधा कुंड श्याम कुंड हो या किधर भी, आपके तरफ से कोई कचरा नहीं होना चाहिए, कुछ जेब में डालो, एक पन्नी लेके साथ में चलो, जो भी है वो पन्नी में डालो, वापस आके कचरे के डिब्बा में डालो। आपके तरफ से धाम में कहीं भी कोई भी कचरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, निर्माण नहीं होना चाहिए, सब भी बताएंगे आपको। और फिर दूसरे दिन हम चलेंगे, जितना हो सके उतना चलेंगे और जगह जगह रुक रुक के आपको स्थानों का दर्शन और कथा बताते रहेंगे। तो एक समय पर रोकेंगे, वापस ऑटो रिक्शा से वापस अपने स्थान पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, विश्राम लेंगे, शाम को कथा करेंगे, फिर अगले दिन वहीं से शुरू करेंगे और कुछ समय तक जाएंगे। और विचार यह है कि 3 दिन में पूरा हम देखेंगे, तो उसके लिए बहुत मैनेजमेंट लगता है कि भाई कितना तक आ गए, कितना बाकी है, उसके हिसाब से जल्दी छोटा स्लो करना पड़ता है। पर वो किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि हर समय जब हम जाते हैं वे योजना बना के, स्थितियाँ हर समय अलग होती है वहाँ पर, और स्थिति को देखते हुए बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मेरे मन में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी योजना हैं, कितनी कार्यान्वित होगी उनकी कृपा से वो हमें स्वीकार करना है। गोवर्धन परिक्रमा के नियम, गोवर्धन परिक्रमा आधी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सुना कुछ कुछ लोग 20 तारीख को जा रहे हैं, कुछ 2 दिन के बाद जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप आ रहे हो तो आ जाओ, लेकिन फिर हमारी दिन की परिक्रमा होने के बाद में हम जब वापस लौटेंगे आपको अपना कंटिन्यू करना है। बिना गोवर्धन परिक्रमा पूरा किए वृंदावन धाम नहीं छोड़ना है आपको, वो अपराध है। आप वृंदावन धाम में कहीं भी, यहाँ से वृंदावन जाओ, बरसाने जाओ, थोड़े दिन के बाद में आओ और बचा हुआ पूरा करो, वो चलेगा, लेकिन ब्रजभूमि छोड़ना नहीं आपको, वहाँ से मुंबई नहीं जाना है आपको, तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए जिनको जिनको जाना है बीच में, उनको ये नियम पालन करना है। मैं नियंत्रण में नहीं हूँ, अगर बीमार पड़ गए, वो शुरू कर दिया अभी बीमार पड़ गए, तो मेरे पास उत्तर नहीं है क्या करना है उसका। और गोवर्धन परिक्रमा ऐसे करो पूरे हृदय से, जो जो आप देख रहे हो यहाँ बसना चाहिए। और जब भी बम्बई में परिक्रमा करने का मन हुआ तो मानसिक परिक्रमा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो रोज गोवर्धन की मानसिक परिक्रमा करते हैं, ब्रजवासी भी है और बाहर के लोग भी है, क्यों ना हम भी ऐसा कौशल्य निर्माण करें। वो किस पर आधारित है, कितने हृदय से, कितने ध्यान से, कितने नेत्रों से आप वो परिक्रमा कर रहे हैं, उसके ऊपर ये तय होता है कितना आपको स्मृति में होगा, फिर वैसे आप परिक्रमा करेंगे। और कठिन बात नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हृदय से नोट करते हुए ध्यानपूर्वक चलेंगे तो आप इसी परिक्रमा के बाद में घर में पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। लिखने का प्रयोजन क्या है, आपको पता है इसके बाद में ये स्थान है, 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 आप भूल भी जाएंगे तो आपने नोट में लिखा हुआ है। तो नोट लिखना आपकी तपस्या होगी, आलस्य मत करना। आपने इतना समय निकाला है, धन खर्च किया है, समय दे रहे हैं, इतनी इच्छा लेकर आए हैं, निश्चय करके आए हैं, पूरा लाभ लीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहली परिक्रमा श्री कृष्ण भगवान ने की थी गिरिराज गोवर्धन की, अपने नेतृत्व में गोवर्धन पूजा के बाद। ये बहुत सुंदर इतिहास है उसका। और गोवर्धन परिक्रमा करने का एक ही भाव होता है, गोवर्धन के चरणों की पूजा। इसलिए हम बार बार सबको विनती करते रहते हैं, और हमारा डंडा जो है ना उससे ऐसा बार बार कुछ कुछ दिखाते रहते हैं, देखो 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 है, ऐसा नहीं कि मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं कुछ कुछ दिखाते रहता हूँ ताकि आपका ध्यान, आपकी दृष्टि सदैव गिरिराज पर टिकी रहे। इधर मत देखना, राइट में साइड में देखना, गिरिराज पर ध्यान करते हुए परिक्रमा करना है। आप अखंड जप कर सकते हैं, कथा शुरू होते जप रुकिए, कथा सुनिए, फिर चलने लगेंगे तो जप करना है, यहाँ वहाँ के बाकी बिल्कुल नहीं करना है आपको। और गोवर्धन परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन के चरणों की पूजन वंदन के रूप में करना है। भगवान कृष्ण ने भी उसी भावना से किया था। गिरिराज की परिक्रमा करने से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। गिरिराज की तलैटी में यानी तट पे निवास करने के लिए भक्त तरसते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने वो गोवर्धन अष्टकम लिखा है, उसमें बार बार कहते हैं निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम, कब आप हमें आपके तट में निवास देंगे, ये भक्तों का लाइफ का लक्ष्य है। तो आप जितना समय वहाँ रहने वाले हो आप भी गोवर्धन की तलेटी में निवास करने वाले हो, गोवर्धन वास प्राप्त होगा। इसलिए रूम पे आने के बाद भूलना नहीं है कि आप गोवर्धन के तट पे निवास कर रहे हैं, ये चेतना होनी चाहिए, सदैव गंभीरता और गहराई होनी चाहिए भाव में। हमें भी अधिक वास बरसाने का मिलता है, वृंदावन का मिलता है, गोवर्धन का कम मिलता है बहुत। राधा कुंड का इस 40 साल में केवल एक दिन निवास मिला है मुझे, रात्रि निवास। इमेजिन, दिन में कई बार गया हूँ, रात्रि निवास केवल एक दिन मिला है। तो इस बार हम 4 दिन रहने वाले हैं वहाँ पर। एक यात्रा में 7 दिन गोवर्धन के पास रहे थे, राधा कुंड में नहीं रहे थे, वो माहेश्वर सदन जो है ना, दान निवर्तन कुंड, उसके सामने जहाँ न्यूर की शुरुआत होती है, वहाँ रहे थे। तो आपके भाग्य की कोई वर्णन करने की कोई सीमा ही नहीं है, इतने आप भाग्यशाली हो। तो आपको मैं बधाई देता हूँ और आप सब के लिए राधा रानी के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, श्री कृष्ण बलराम के चरणों में आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए भी करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ, कि हमारी सारा प्रयास जो है वो सफल हो और जिनको मुमकिन है वो नंगे पैर परिक्रमा कर सकते हैं, जिनको नहीं मुमकिन है वो मोजा पहन के कर सकते हैं, जिनको और भी मुमकिन नहीं है तो वो स्लीपर्स पहन के कर सकते हैं, और अब बहुत ही मुश्किल है तो जूता पहन के भी कर सकते हैं, लेकिन भाव जो है वो जगह पर रखिए। फाइनली जो है ना, वो चप्पल से कर रहे हैं कि जूता से कर रहे हैं कि नंगे पैर कर रहे हैं, भाव किधर है उसके ऊपर उसका लाभ निर्भर है। इसलिए इतना भी कष्ट मत करना कि आपका ध्यान उस कष्ट पर ही रहे, अरे पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ध्यान गोवर्धन पर रहे, और उसके लिए क्या आवश्यक है वो कीजिए आप, डू द नीडफुल। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।